राधिकाए तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमः। शिष्य गुरुगण धार्मिका गिरधारी की विशेष कृपा से 7 दिनों तक बड़ी रसीली और सिद्धांत पूर्ण कथाएं चल रही थी। आज उसका समापन दिवस है। अभी तक दशम स्कंध सुदामा जी के चरित्र से समाप्त हुआ, एकादश और द्वादश की कथाएं होंगी। उसमें 11वें स्कंद में कृष्ण ने ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ में कृष्ण के समीप आए और बोले, जे प्रभो, हम लोगों ने आपसे भूभार हरण करने के लिए प्रार्थना की थी। आपने बाल्यकाल में उतना अघासुर बकासुर सब दैत्य दानवों को मारा, पुनः कंस और उसके अनुचरों को मारा, जरासंध इत्यादि राजाओं को मार करके भूभार हरण किया, अंत में महाभारत के युद्ध में दोनों पक्षीय जो सेनाएं थी जिनके भार से पृथ्वी उत्पीड़ित हो रही थी उसको भी आपने उतार दिया। पौंड्रीक साल्व काशी नरेश इत्यादि सबको आपने संहार कर पृथ्वी का भार उतार दिया। अब यदि आपकी कृपा हो और उचित समझें तो आप अब गोलोक वृंदावन में पधारिए। कृष्ण ने कहा, जब मैं भी ऐसा ही समझ रहा था, जिस काम के लिए मैं आया था वो सब भार उतर गया, किंतु अभी कुछ काम बाकी है। वो काम क्या है? हमारे कुल में मेरे हाथों के द्वारा रक्षित जादव जो कुल है उनके भार से भी मेरे जाने के बाद में वो देवताओं को भी हरा देंगे और हो सकता है वो पृथ्वी के भार स्वरूप हो। इसलिए यह काम भी पूरा करके और मैं शीघ्र ही वैकुंठ लोग जाते समय तो आप लोगों के ब्रह्मलोक सत्यलोक से होकर के जाऊंगा। यह करके उनको तो भेज दिया ब्रह्मा जी और देवता लोग अपने ध्यान में गए। इधर भगवान की प्रेरणा से, कृष्ण की प्रेरणा से कुछ जदुवंशी बालक लोग शाम्ब को, उनके पुत्र शाम्ब हैं कृष्ण, उनको स्त्री के रूप में सजाया और उसके पेट को कपड़े से और एक तवा होता है रोटी सेकने का उसके ऊपर में बांध दिया, ऊंचा कर दिया और गर्भवती जैसा बना करके ऋषियों के पास में गए। उस समय में पास ही देवर्षि नारद, महर्षि दुर्वासा, वशिष्ठ और बहुत से ऋषि लोग कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पास ही में कुछ हरिकथा का सत्र कर रहे थे, हरिकथा हो रही। उस समय ये उद्दंड लड़के उनके पास में पहुंचे اور بولے یہ بڑی لجیلی یہ سندری ہے، گربھوتی ہو گئی ہے، اس کو گربھ میں بچہ ہے، آپ لوگ کرپا کر کے، آپ تو سب انترجامی ہیں، یہ بتلائیے کہ اس کو بیٹا ہو گئی یا بیٹی۔ ایک بار نہیں، دو تین بار انہوں نے ان سے پوچھی، ان کا اپہاس کرنے کے لیے۔ تب رشیوں کو بڑا کرودھ آیا اور وہ بھگوان کی پریرنا سے ہی ابھیشمپات ان کو دیا شاپ، او اس کے گربھ سے بیٹا اور بیٹی کچھ نہیں، ایک مسل پیدا ہوگا اور وہ تمہارے سارے بنس کا دھونس کر دے گا۔ اب تو یہ لڑکے بڑے ڈرے اور وہاں سے آ کر کے پیٹ کو کھولا، دیکھا کہ سمچوچ میں اس میں ایک موسل جس سے استریاں کوٹتی ہیں اوکھل میں، وہ دیکھا، اور اس کے انت میں اس میں لوہے کا ایک وہ کیا کہتے ہیں وہ اس پر لگا ہوا تھا، ایسا ہی ہوتا ہے موسل۔ اب تو وہ بڑے ڈرے اور کرشن سے کچھ نہیں کہا، مہاراج اگرسین کے پاس میں گئے اور بولے، پتامہ ہم لوگوں نے بڑا نیائے کیا، ان رشیوں سے دل لگی کرنے کے لیے، پریہاس کرنے کے لیے ہم لوگ گئے تھے اور انہوں نے ابھیشاپ دے دیا کہ یہ اس کے گرب سے بیٹا اور بیٹی نہیں ہو کر کے موسل پیدا ہوگا، اسے تمہارے ونس کا دھونس ہو جائے گا، یہ کہہ کر کے وہ موسل ان کو دے دیا۔ انہوں نے کہا جی تم نے بڑا انیائے کیا، اسے بچنے کا اپائے کیا ہو سکتا، یہ کہہ کر کے موسل کو جلا دیا اور اس کے لوہے کا جو بھاگ تھا گول اس کو پتھر پر رگڑ کر ایک دم ایسا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، ستو جیسا، دھولی جیسا، کنتو ایک ایسا تھا اس کا جو بچا ہوا بھاگ وہ چورن نہیں ہو سکا، وہ تین کونے جیسا رکھ کر کے بڑا نکیلا بن گیا، چھوٹا سا، اور انہوں نے اس لوہے کے چورن کو اور موسل کے جلے ہوئے بھسم کو لے کر سمندر میں بیچوں بیچ میں جا کر کے ڈال دیا اگرسین کی اچھا سے، کنتو کرشن کو کچھ نہیں بتلایا۔ پھر وہ جو لوہے کا جو ٹکڑا تھا ایک مچھلی نگل گئی اور جو چھوٹے چھوٹے کڑ ہو گئے تھے لوہے کے وہ لہروں کے تھپیڑوں سے سمندر کے تٹ پر آئے، جس سے بڑے بڑے پودے جس کو ایرکا کہتے ہیں، جس کے پتے بڑے نکیلے ہوتے ہیں، وہ برکش ہو گئے۔ اس مچھلی کو ملاحوں نے پکڑ لیا اور اس کا مانس کاٹ کر کے رسوئی بنانے کے لیے جب کاٹنے لگے تو پیٹ سے وہ نکلا لوہے والا کھنڈ، اس کو اس بہیلیے نے اپنے تیر کے انت میں لگا دیا۔ یہاں تک تو ہوا، ادھر دوارکا میں بڑے بڑے اتپات ہونے لگے، رکت کی برسہ ہونے لگی، ہاتھی کتے آدھی جانور بھونکنے لگے، چگھاڑ کرنے لگے، بنا بات کی بات آندھی बिजली कड़कने लगी। कृष्ण ने कहा जी ये क्या बात कहे क्यों? ओहो, इन लड़कों के उत्पात से अब द्वारका के नष्ट होने का समय आ गया है, चारों ओर विपत्ति ही दिख पड़ती है। उन्होंने सब जदवंशियों को बुला करके कहा अब द्वारका में मत रहो, बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, पासी में सोम तीर्थ है जहां सोमनाथ जी का मंदिर है, बड़ा पवित्र स्थान है, वहां पर हम सब चलें और वहां पर यज्ञ करेंगे और यज्ञ करके ब्राह्मणों को संतुष्ट करेंगे, उनको गौ में देंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, इस तरह से उनका अभिशाप का भाव दूर हो जाएगा, फिर हम लोग सुख और शांति से रहेंगे। कृष्ण के कहने पर सब जदुवंशी लोग प्रस्तुत हो गए और सब लोग सोम तीर्थ में गए। केवल बूढ़े बड़ों को, जैसे कि कृष्ण के पिता वसुदेव जी, उग्रसेन इत्यादि वहां रह गए और उनकी रानियां भी रह गई, और बाकी जितने क्षत्रिय वीर थे सभी लोग वहां पर पहुंचे, यज्ञ किया और ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणाएं दी, उनको खिलाया पिलाया, उनको गाय इत्यादि दान में दी, और अंत में मैरे नाम का एक शराब होता है, मद्य होता है, उन्होंने खूब जोर से पी लिया और उससे वो बुद्धिहीन हो गए। एक तो कृष्ण की माया, दूसरे उसके पीने से एकदम मतवाले हो गए, अपना पराया ये सब भूल गए, एक दूसरे से गाली गलौज करने लगे और अंत में लड़ने लगे हथियारों से, अस्त्र से, धनुष बाण से परस्पर लड़ करके एक दूसरे को मारने और मरने। जब उनका बाण और अस्त्र शस्त्र तलवार गदा खत्म हो गई तो सामने किनारे, समुद्र के किनारे एरका जो घासे थी उनको उखाड़ना आरंभ किया और उसी से लड़ना आरंभ किया, वो वज्र के समान कठोर हो गई और उनसे एक दूसरे को मार करके सभी लोग मरने लगे। उस समय बलदेव प्रभु जी उनको समझाने गए तो उन पर भी आक्रमण किया बलदेव प्रभु जी, इसके बाद में कृष्ण पर भी आक्रमण कर दिया। तब कृष्ण और बलदेव जी ने बाकी बचे हुए वीरों का सबका संहार कर दिया मारकर। बलदेव प्रभु जी इसके बाद में समुद्र के तट पर बैठ करके कुछ ध्यान किया और उनका संकर्षण रूप सर्प का निकला अनंत, और वहां से उत्तर की तरफ में चले गए। कृष्ण देखा जब तक उनका संहार हो गया, उनकी इच्छा तो पूरी हो गई, अब वो पास ही में एक पेड़ के नीचे एक पैर के ऊपर में दूसरा पैर रखकर बैठ गए। इतने में उद्धव जी उनको खोजते खोजते पहुंचे। उसी समय में मैत्रेय ऋषि वहां पर पहुंच गए। उस समय उद्धव जी ने कहा जे प्रभु मैं जान गया अब तो आप इस लोक को छोड़ने वाले हैं, कृपा करके मुझे भी अपने साथ में ले चलिए। उन्होंने कहा जी नहीं, मेरे बाद में तुम ही जगत में रह करके मेरी लीला कथाओं का जगत में प्रचार करके लोगों का उद्धार करेगा, इसलिए तुमको यहाँ रहना पड़ेगा। तुम यहाँ से आज से सातवें दिन समुद्र द्वारकापुरी को डुबा देगा, तुम यहाँ मत रहो, और नगर वासियों को भी कह दो जो वो अर्जुन के साथ में इंद्रप्रस्थ चले जाए, वो भी न रहे, हमारी महिषियां भी न रहे, कोई भी यहाँ इसमें न रहे। उस समय में उद्धव जी ने कहा कि जब मैं आप जा रहे हैं मुझे नहीं ले जा रहे हैं तो हमारा कल्याण कैसे होगा आप बतलाइए, माया को कैसे पार कर सकूंगा। तब उन्होंने उद्धव संवाद जो कहलाता है श्रीमद एकादश स्कंद के 6 से 29 अध्याय तक उनको सुनाया। माया क्या है, माया क्या है जो सृष्टि स्थिति प्रलय करती है, जो जीवात्मा को इस शरीर में मैं हूं और ये मेरे है ये बुद्धि कराती है और संसार चक्र में जिनको फंसाती है वो माया है। बड़ी दुरत्या इस माया को पार पाना कठिन है, हम सब इसी माया में डूबे हुए हैं। इसे रक्षा का उपाय क्या है, भयं द्वितीया दमनिमिषत, भगवान को भूलने से हमारी ये दुर्वस्था हुई है। अब हम लोग संसार में डूब करके उस भगवान को याद नहीं करते, याद किसके करते हैं जो नश्वर चीजें हैं। ये मेरी पत्नी है, ये मैं मेरे पति हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है, ये मेरा धन संपत्ति है, ये हमारे सगे संबंधी है। उनके मरने पर शोक करते हैं और पुत्र होने पर आनंदित होते हैं और गए भगवान को भूल, यही माया है। तो इससे बचने का उपाय गुरु के चरण में शरणागत हो जाओ, उनसे तत्वज्ञान की शिक्षा करो, भक्ति की शिक्षा करो और फिर उनके बतलाए हुए उपायों से भक्ति के अंगों से भगवान का भजन करो, तभी संसार से पार हो सकते हो, अन्यथा नहीं। इसके बाद में कृष्ण ने उनको 24 गुरु वाले दत्तात्रेय जी की कथा सुनाई, धरती जैसा सहिष्णु बनो, वृक्षों जैसा सहिष्णु बनो, वृक्षों का पत्ता, वृक्ष का छाल, वृक्ष का रस, सब कुछ परोपकार के लिए होता है, अपने लिए नहीं। उनकी लकड़ी से ये सब खाट पलंग और न जाने क्या क्या बनते हैं। यदि कोई पत्थर मरता है तो वो फल देते हैं, कभी भी पानी नहीं मांगते, किसी की निंदा नहीं करते। वैष्णव लोगों को ऐसा होना चाहिए, तब भगवान का भजन हो सकता है। देखो एक समय एक राजा थे, क्या नाम, पौ में राजा थे जो कि मेमनों के लिए उर्वशी के लिए मोहित हो गए। पुरुर्वा राजा थे, एक समय वन में गए थे, वन में एक परम सुंदरी जुआ लड़की को देखा, देख करके मुग्ध हो गए। पूछो जो सुकुमारी देवी आप कौन है, किस लिए वन में आई हूं। उसने कहा जे मैं देवलोक से आई हूं, मेरा नाम उर्वशी है, मैं पति ढूंढ रही हूं, आप यदि मेरा पति होएं तो मुझे बड़ी खुशी हो। उन्होंने कहा जाए तो मुझको भी इससे अधिक और क्या खुशी हो, बस राजमहल में लौट करके उसके साथ में विवाह करके उसको रखने लगे। उसका एक शर्त था, मेरे 2 मेमने हैं, ये मेरे बड़े प्यारे हैं, इसको आपको रक्षा करनी पड़ी, इसको कोई ले ना जाए, यदि कोई ले गया तो मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी, और दूसरा मैं आपको कभी भी नंगा नहीं देखना चाहती, यदि नंगा देखी तो मैं छोड़ करके चली जाऊंगी अपने लोक में। राजा ने कहा जे ठीक है। कुछ दिनों के बाद में अपने स्त्री के पास में वो थे, उसी समय में इंद्र ने कहा उर्वशी के बिना तो स्वर्ग लोक फीका है, हे अनचरो तुम जाओ और उर्वशी को किसी प्रकार से ले आओ, तुम लोग यदि उसके मेमनों को चुरा करके लाओगे तो वो अपने आप चली आई। तो वो भेड़ों को मेमनों को चुराने के लिए गए। आधी रात के समय में राजा नंगे अपनी स्त्री के पास में थे, उस समय में वो भेड़ों को चुरा करके देवता कंचर जब लेने जाने लगे तो मेमने मैं करने लगे। उस समय उर्वशी ने कहा, अरे कापुरुष, तू बड़ा वीर बनता है, तेरे सामने ही ये न जाने कौन चोर हमारे मेमने को ले जा रहे हैं, तुम इसकी रक्षा नहीं कर सकते। तो वो जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में धनुष बाण या तलवार लेकर के चले, नंगे भी हो गए। और वो जो देवता कंचर थे भेड़ों को ले जा रहे थे, उनके डर के मारे भाग गए छोड़ करके। अब उसको नंगा देखकर उर्वशी ने कहा, अब आपके साथ में मैं नहीं रह सकता, ये कह करके अपने लोग जाने लगी। अब तो ये गिड़ा करके उसके चरणों में गिर करके कहने लगे, देवी थोड़ी सी देर ठहर जाओ, मेरी कामना पूरी नहीं हुई, मेरी बात मान लो, मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं अपने जीवन को धारण नहीं कर सकता, जैसे कामी पुरुष की गति होती है। उसने समझाया कि स्त्रियों को मोह में मत फंसो, जो फंसते हैं वो मरते हैं। किंतु उनको ज्ञान नहीं हुआ, बहुत तरह से समझाया शास्त्रों की बात, नहीं समझे तो वो अपने लोक को चली गई। अब लोग को चल गई थी ये पीछे 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 रोते हुए उसके पीछे पीछे लग करके उसके लोक में गए। वहां कुछ दिन रहे और फिर ज्ञान हुआ, अरे मैं राजा होकर के इतना वीर और एक गधे की भांति जिस प्रकार से गधा गधी के पीछे दो लत्ती सहता हुआ भी चलता है, मैं इतना वीर होकर के भी ये ऐसे कैसे बन गया, मुझको धिक्कार है। द्रौपदी काश में कोई दोष नहीं, उसने तो समझाया किंतु मैं नहीं समझा, कामी पुरुष ओ मारा जीवन बर्बाद हो गया, उसने ठग लिया। ये कह करके अपने मन से उर्वशी को निकाल दिया और लौटे, राज्यपाट छोड़ दिया और भगवत भजन के लिए चले। ऐसे कामी पुरुष, ऐसे कामी स्त्रियां संसार में डूबी हुई हैं, इनसे सावधान रह करके भगवान का भजन करना ही। इस प्रकार से उपदेश दिया। अब उधर में सुनो क्या हुआ। ये उपदेश देने के बाद में कृष्ण वहीं पर बैठे थे, ठीक है, बैठे हुए थे। इतने में बहेलिए ने देखा उनके चरण के तलवे को लाल, उसने कहा जे एक मृगा कोई है, उसकी जीभ शायद है हिरण, बस वहीं से बाण चलाया, वही बाण जिसके नोक पर वो लोहे का लगा हुआ था सांप, और कृष्ण के चरणों में लगा। उस समय फिर वो दौड़ते हुए आया हिरण को पकड़ने के लिए, तो देखा ये तो कृष्ण बैठे हैं, ओ मैंने भूल से क्या कर दिया कृष्ण के चरणों में, ओह आप सब जगत के आधार हैं, विश्व की सृष्टि करने वाले हैं, मैंने कितना अन्याय कर दिया, आप कृपा करके मुझे दंड दे। कृष्ण ने कहा, मैं यही चाहता था, तुम चिंता मत करो, अभी तुम इसके लिए स्वर्ग में जाओ, कोई चिंता मत करो। इतने में उनका सारथी दारुक आया कृष्ण का, उस रथ पर लेकर के जिस पर वो चढ़ते थे, जब ही आया देखा क्या, जब उसे उतर करके कृष्ण के पास आया, उनके चरणों में गिर गया, देखा जे वो घोड़े और कृष्ण का अस्त्र शस्त्र सब कुछ सभी कुछ आकाश मार्ग में उड़ गए। अरे ये क्या हुआ। तब कृष्ण ने कहा जे जल्दी से लौटो यहां से और जाओ वसुदेव देवकी और उग्रसेन सबको कह दोगी आज से, आज ही से सातवें दिन में समुद्र ग्रास कर लेगा सारी, सब लोग यहां से जाओ। अर्जुन आएगा ले जाएगा, यह कह करके फिर अपने शरीर से ही अंतर्ध्यान हो गए। जैसे बिजली आकाश में प्रवेश कर जाती है, सब देवता लोग ब्रह्मा शंकर इत्यादि ने देखा, हाथ जोड़ करके पुष्प वृष्टि होने लगी, आकाश से धुंद भी बजने लगी और ये लोग स्तव स्तुति करने लगे और देखते देखते चले गए। यहां पर हुआ क्या? कृष्ण के जो साथ में रहने वाले परिकर हैं उसमें कृष्ण के पुत्र क्या है, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न जी, अनिरुद्ध जी, शंकरसन, ये सब कृष्ण के परिकर भगवान ही हैं। वो परस्पर लड़कर के मरेंगे? नहीं मरेंगे। ये तो एक लीला हुई लोगों को, जो कि विमुख लोग हैं भगवान से, उन लोगों को दिखलाने के लिए। असल में ये हुआ ही नहीं कुछ। जिस प्रकार से एक जादूगर था, वो अपनी पत्नी और दो लड़कों के साथ में कुछ खेल दिखलाने के लिए पुरस्कार की लालसा से राजभवन में गया। राजा और रानी, उसके लड़के और सभासद लोग वहां पर एकत्रित हुए और दो बांसों पर एक रस्सा डाल दिया और उसके ऊपर में, रस्से के ऊपर में वो चढ़ गई। सिर पर 1, 2, 3 घड़े, हाथ में एक बांस और लेकर के उसी पर नृत्य करने लगे, यहां से उधर, उधर से उधर। देख करके सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए, वह ये कैसे नाच रही है इस रस्सी के ऊपर में। जब उतरी तो रानी ने उसको एक हार गले में पहनाया, सोने का पहनाया। तो पासी में उसके दो लड़के थे, 8 वर्ष 9 वर्ष के, मैया मैं मुझे दो, मुझे दो, एक तरफ से ये खींचने लगा, इधर से इधर खींचने लगा। तो नटी ने निकाल करके छोड़ दिया, अब वो खींचने लगा अपने तरफ। दोनों समान बलवान थे, कोई हारे जीते नहीं। तो एक ने तलवार अपने मन से निकाली और दूसरे ने भी तलवार निकाली और उसने एक के गले को काट दिया, उसने दूसरे को गले, दोनों गिर पड़े। ये देखकर के नटी थी उनकी मैया, अरे क्या हो गया, मेरे लड़के मारे गए? बस एक तलवार उठा करके अपने गले को, और जो नट था, अरे मेरे लड़के पत्नी सभी मारे गए, उसने भी तलवार ली और गले से। अब तो वहां पर हाहाकार मच गया, सब लोगों ने कहा जी खेल क्या था, ये तो बड़ा भारी अनर्थ हो गया। उसके शव को घर ने हटवा दिया और फिर रात में गए, बड़े सोचते रहे जी ये बड़ा अनर्थ हो गया। दूसरे दिन सवेरे उनके पास में कोई पत्र आया, महाराज हम लोगों ने पहले जो खेल दिखलाया तो सोने का हार दिया, और दूसरा जो खेल दिखलाया उसका आपने कोई पुरस्कार नहीं दिया, हम लोग मरे नहीं, वो तो खेल हमारा था। राजा रानी बड़े प्रसन्न हैं, कल हमारे घर पर आइए और देखिए जी हम लोग सब कुशल से हैं, और हमारा इनाम भी लेना मत भूलेंगे, लेते आइएगा। राजा रानी और सभासद उसके घर पर गए, देखा घर के बाहर वो फूलों की माला लेकर और उनके स्वागत के लिए वो खड़े हैं। राजा रानी को गले में माला दिया, महाराज हमारा पुरस्कार क्या, हम लोग तो अभी जीवित हैं। अरे तुम लोग जीवित हो, ये जैसे है ऐसे ही कृष्ण की योग माया से, महामाया से, कोई भी युद्ध नहीं हुआ, कोई लड़े नहीं, कोई मरे नहीं, ये भगवान की माया थी। इसलिए मत समझिए यदुवंश का ध्वंस हो गया, वो तो एक लीला थी विमुखों को दिखलाने के लिए। और इसलिए कि उस कुल में जो देवता लोग आए थे कृष्ण की सेवा करने के लिए, जो देवलोक से आए थे देवलोक में चले गए, और बैकुंठ से जो आए बैकुंठ लोक में चले गए, जो गोलोक वृंदावन से आए थे वृंदावन में चले गए, और उनकी पत्नियां जो श्रीमती राधिका इत्यादि सखियों की सेवा के लिए आई थी वो कृष्ण के साथ में उनके धाम में चली गई। इसलिए न कोई युद्ध हुआ, न ये लोग मरे, न कुछ हुआ। ऐसे ही हमने भी देखा है कोई जादूगर अपने लड़के का सिर काट करके और बक्से में बंद कर दिया, चाबी दिलवाया और कहा बेटा आ जाओ, और बाहर से पिताजी मेरे यहाँ। ऐसी सब लीलाएं होती हैं, कृष्ण कर सकते हैं। इसलिए ऐसा मत सोचे जी कृष्ण भी बाण लगा और मर गए। अरे कृष्ण को, कृष्ण ने आग खा लिया, जमुना का विषैला पानी पी लिया, दवाड़ में आग को ऐसे पी लिया, मरे नहीं। महाभारत युद्ध में भीष्म और कितने कर्ण उसके बाणों से बीत गए तब नहीं मरे, और बहेलिए के प्राण से मर जाएंगे ऐसा। इस तरह से अब बाकी की कथा आप सुनाए, तीर्थ महाराज जी अभी आप लोगों को सुनाएंगे।